खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। ये बहुत ही अजीम बात है कि इस वादे पर हम जब गौर करते हैं, ऐसे क्या कह सकते हैं कि भरोसे को देखते हैं। ये भरोसा हमें बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों की जिंदगी में जगह ब जगह नजर आता है। जब जब मैं पालूस रसूल की ज़िंदगी को पढ़ता हूँ तो उसमें एक अजीब खुशी, हौसला, तसल्ली और उम्मीद की हमें क्या मिलती है, शादमानी मिलती है। और जब हम पुराने अहदनामा को देखते हैं तो खासकर जब मैं अय्यूब की ज़िंदगी को देखता हूँ तो अय्यूब की ज़िंदगी हम सब के लिए ना कि सिर्फ सबक का बायस है, बल्कि सबसे बढ़कर हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हम अपने दुखों और मुसीबतों और तकलीफ़ों में किस तरह खुदावंद खुदा से जुड़े रह सकते हैं। क्योंकि जिस दौर में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये दौर दिन ब दिन बिगड़ेगा, बरगश्तगी और फिर क्या कहते हैं कि रूहानी अबतरी क्या करती है, बढ़ती जाएगी। अबतरी का मुराद यानी के फसाद, यानी के गुमराही, यानी के नासमझी का दौर बढ़ता जाएगा। सो इन हालात में हमें अय्यूब की तरह इस सच्चे वादे को और सच्चाई को याद रखने की जरूरत है। मैं आपके साथ आज एक बात शेयर करना चाहता हूं, वो अय्यूब की जिंदगी में से, कि अय्यूब जब अपने दोस्तों से मलामत का सामना कर रहा था, हर तरह के अल्जामों का सामना कर रहा था, हर तरह की क्या कहते हैं कि हौसला शिकनी, यानी कि उसका हौसला बढ़ाने की बजाय वो उसका हौसला तोड़ रहे थे, उसे मजबूत करने की बजाय उसे कह रहे थे कि आज जो कुछ भी तुझ पर हुआ है, तेरे बीवी, तेरे बच्चे, तेरा कारोबार, तेरे नौकर, तेरी शानो शौकत, ये सब कुछ तेरी बीवी तेरी मुखालफत में बो रही है, और तेरा बदन इन फोड़ों से भरा हुआ है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि तू ने कोई ना कोई खुदा के खिलाफ क्या किया है, गुनाह किया है। तो पालूस रसूल, खुदा का बंदा अय्यूब इस सच से वाकिफ थे और इस वादे को और इस सच को, और इसे कह सकते हैं कि ये अय्यूब का क्या है, एतकाद, यकीन और भरोसा है कि वो अपने तमाम हालात में इस बात को जानता है, अकली तौर पर नहीं बल्कि दिली तौर पर। मेरे साथ देखें अय्यूब उसका 19वां बाप, उसकी 25वीं आयत से, जो बहन भाई कलामे खुदा लाए हैं पढ़ सकते हैं, वो खोलें, अगर नहीं लाएं तो गौर से सुने। पुराने अहदनामा में अय्यूब की किताब उसका 19वां बाप, उसकी 25वीं आयत से, खुदा का बंदा अय्यूब कहता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में खुदा को देखूंगा। ये खुदा के बंदा अय्यूब का एतकाद और भरोसा और यकीन है। हजारों हजारों साल पहले, इससे पहले के मसीह पैदा हो, इससे पहले के मसीह निजात के काम को करे, अय्यूब का क्या भरोसा है कि मैं जानता हूं, शख्सी तौर पर मैं ये बात मानता हूं, जानता हूं, यकीन करता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला, यानी कि निजात देने वाला, छुटकारा देने वाला, रहाई देने वाला, बचाने वाला, महफूज करने वाला जिंदा है। हमें ऐसा यकीन अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे पुराने अहदनामा के तमाम ईमानदार आने वाले वक्त के बारे में कहते थे कि हमारा मखलसी देने वाला मसीह यशुआ, यस्सु मसीह, मसा किया हुआ जिंदा है, और आखिर एक दिन आएगा वो जमीन पर खड़ा होगा अदालत करने के लिए, अंजाम और सिला और बदला देने के लिए। और खुदा का बंदा यूं कहता है कि अपनी खाल, अपने जिस्म के बर्बाद होने को वो देख रहा था कि किस तरह वो फोड़ों से भरा हुआ है, किस तरह उसके जिस्म के हालात हैं। उन सब को वो देखते हुए कहता है, फिर भी मैं अपने इस बदन में खुदा को देखूंगा। जैसे उनकी उम्मीद थी आने वाले वक्त के बारे में, आज हम क्या देखते हैं कि हाँ यीशु मसीह आएगा। और हम कहाँ पर देखते हैं कि सलीब पर यीशु मसीह ने जो काम मुकम्मल किया है, उसके बायस हम यीशु को देखेंगे आने वाले दिनों में। सो आए चंद लम्हों के लिए खुदा के हजूर झुकें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद अय्यूब जैसा मुझे तुझे जानने की, ऐसी कुर्बत मुझे दे कि तुझे जानूं, और ना कि सिर्फ खुशहाली में बल्कि बदहाली में, दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, और इस फरेब से भरी हुई दुनिया में तुझे शख्सी तौर पर समझूं और तेरे कलाम पर यकीन करूं जैसे अय्यूब नबी का था। कादरे मुतले खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के कलाम के वसीला से जो हम पढ़ चुके हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो बातें सीखने वाले हैं। खुदावंद ये महज हमारे दिमाग में ना रहे बल्कि दिल में उतरे, और खुदावंद खुदा हम अपने लिए इसे खजाना बनाएं और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए इस खजाने को बांटने का वसीला बने। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अय्यूब जानता था, आज सवाल ये है, क्या हम सब उसे जानते हैं? इसका जवाब ये है, हाँ हम यीशु मसीह को जानते हैं। लेकिन अगला सवाल ये है कि किस हद तक, किस हद तक? जब हमारी जिंदगी में दुख, मुसीबत, परेशानी, खुशहाली आती है तो हम किस हद तक इस बात को याद रखते हैं कि हमारा मखलसी देने वाला जिंदा है? इसलिए आज मैं चाहता हूं कि हम अबलीस के उन 9 नकली कामों में से एक और काम पर गौर करें। कल हमने देखा था कि यहूदी जो रहनुमा थे, वो यीशु मसीह की और उनके साथ जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें वो क्या थे? गुमराह थे, वो फरेब में थे, वो बरगश्तगी में थे, वो रूहानी तौर पर अंधे थे। इसीलिए यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम अपने बाप अबलीस शैतान से हो, क्योंकि उसकी सी ख्वाहिश करते हो, उसकी सी बातें कहते हो, क्योंकि वो झूठा है और तुम सच की बजाय झूठ के पैरोकार हो। सो कल हमने देखा था कि हमारा दुश्मन, हमारा मुखालफ, जिसे अबलीस, जिसे खूनी झूठा झूठ का बाप कहा गया है, यूहन्ना 4:8 उसकी हमने 31वीं आयत से 44वीं 47वीं आयत तक पढ़ा था। आज मैं चाहता हूं कि हम अपने मुखालफ अबलीस के उन बनावटी और नकली कामों को जो वो जाहिर करता है, ऐसे हैं कि जैसे खुदा की तरफ से हैं, क्योंकि ये जंग शुरू ही से लगी हुई है और लगी रहेगी जब तक यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक अपना तख्त कायम नहीं करता। अबलीस की यही ख्वाहिश है कि लोगों को गुमराह करे, अबलीस की यही ख्वाहिश है कि वो ईमानदारों को इस तरह अपने आप को पेश करे कि वो इस तरह नजर आए कि वो खुदा की तरफ से हैं। सो मेरे साथ आज देखें बनावटी या नकली शैतान के उन कामों को जिससे वो इंसान को गुमराह करता है। दूसरा थसल्लीकियो, उसका 2 बाप, नए अहदनामा में से दूसरा थसल्लीकियो उसका 2 बाप, हम उसकी 8वीं आयत से पढ़ेंगे, क्योंकि इस बाप में पालूस रसूल आने वाले वक्त की बात कर रहा है कि वो गुमराह करने वाला जिसे मुखालफे मसीह कहा गया है, शैतान कहा गया है, अबलीस कहा गया है, तो वो थसल्लीकियों की कलीसिया को इससे आगाह करता है कि अगर मेरी तरफ से तुम्हें कोई खत, कोई ऐसा क्या कह सकते हैं कि पैगाम मिला हो, तो उसमें ज़रूर जायज़ा लगा लेना, खबरदार रहना कि वो किसकी तरफ से है। अगर मेरी तरफ से है तो तुम उसे पहचान जाओगे, अगर किसी मुखालफ की तरफ से है तो उसे तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ। सो पालूस रसूल आए, वक्त की कमी है, मैं चाहता हूँ कि हम पूरी सोच को पढ़ें। मैं नहीं चाहता कि आधे हिस्से से शुरू करें। पहली आयत से पढ़ते हैं, दूसरा थसलीकियों 2 बाप उसकी पहली आयत। ऐ भाइयों, हम अपने खुदावंद यस्सु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं। ये किस दौर की बात हो रही है? जब यस्सु मसीह आएगा और हर एक ईमानदार जमा किया जाएगा, यानी कि यस्सु मसीह की दूसरी आमद। के किसी रू या खत या किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझ कर के खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफातन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ। कि कोई ऐसा खत, कोई ऐसी कह सकते हैं कि तहरीर जो तुम्हें मिली है, उससे ये समझ के इस बात से फरेब ना खाओ, तुम्हारी अकल जाती ना रहे कि खुदा का दिन आ पहुंचा है। बाइबल मुकद्दस में जब जब भी हमें लफ्ज मिलता है कि खुदावंद का दिन, खुदा का दिन, खुदावंद के दिन के लिए दो तरफ इशारा किया जाता है। एक वो दिन जब यस्सु मसीह अपने लोगों को अजर देगा, एक वो दिन जब यस्सु मसीह शैतान को फना करेगा। सो इस जगह पर जो दिन का जिक्र हो रहा है, जब वो अबलीस को और अबलीस के कामों को नेस्त नबूद करेगा, यानी कि दूसरी आमद। पहली आदम आमद जिसे क्या कहते हैं कि कलीसिया को हवा में उठाया जाना, दूसरी आमद जब यस्सु मसीह जमीन पर उतरेगा और अबलीस को, जैसे मुकाशवा की किताब में लिखा है, कि लोहे के डंडे से मारेगा। तीसरी आयत, किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। अबलीस के बारे में, उसके चेलों के बारे में बात हो रही है, जो मुखालफत करता है, यानी कि अबलीस, और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। कौन अपने आप को बड़ा ठहराता है? शैतान। शैतान अपने आप को खुदा जो माबूद कहलाते हैं उनसे अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। ये दौर आने वाला है जिसमें, जिसके बारे में दानियल ने कहा गया था, जिसमें बहुत से और से हवाला हाजात हमें मिलते हैं, कि अबलीस जिसे मुखालफ मसीह, जो मसीह का हम शक्ल बनता है, याद है आपको मैंने कहा था कि पालूस रसूल कहता है कि हमने किसी दूसरे यस्सु की खुशखबरी नहीं दी। वो दूसरा ये खुश यस्सु कौन है? जो अबलीस है, जो असली यस्सु की नकल करता है, जो क्या करता है? खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? पालूस कलीसिया को याद दिलाता है, अब जो चीज उसे रोक रही है, ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो। इबलीस के कामों को वक्ती तौर पर किसने रोका हुआ है? खुदा के पाक रूह ने। एक दौर आएगा जब कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, तो खुदा का पाक रूह भी आसमान पर उठाया जाएगा, वैसे ही जैसे पुराने दौर में था, जब जब खुदा चाहता था सैमसन पर, मूसा पर, यानी शमा समसून पर, मूसा पर, यर्मिया पर, यसाया पर, नू नू पर, जब जब खुदा चाहता था तो अपना रूह भेजता था। सो ऐसा दौर आने वाला है। वाहद कलीसिया है जो के खुदा के रूह से मामूर की गई है। पुराने नामा में खुदा का रूह आता था, चला जाता था, लेकिन इस दौर में खुदा का रूह ईमानदारों के अंदर रहता है। हमारे अंदर रहता है, इसलिए अबलीस हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, अबलीस हमारा कुछ भी कर नहीं सकता, क्योंकि हमारा मखलसी देने वाला जिंदा है और हमारे ऊपर रूहुल कुद्दस की बाढ़ लगी हुई है, जैसी अय्यूब के गिर्द लगी हुई थी। और खुदा का बंदा पलूस क्या कहता है, 7वीं आयत, 6ठी आयत, सॉरी, अब जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता करता जाता है, मगर एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। रूल कुदस के बारे में बात हो रही है। 8वीं आयत, उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा, अबलीस मुखालफत करने वाला, जिसे खुदावंद यसुम सी अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजली से नेस्त करेगा। यसुमसी कलाम करेगा और अबलीस फना हो जाएगा, और तजली यानी कि उसका जहूर जब होगा। किसके बारे में बात हो रही है? अबलीस के बारे में। और क्या आगे लिखा है? और जिसकी आमद शैतान की तस्वीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात हुई होती। ये सारी बातें बहुत गहरी हैं, लेकिन सादा मफहूम सच्चाई ये है कि यीशु मसीह आएगा और अबलीस का क्या करेगा, कबाड़ा कर देगा। उसका अंजाम क्या होगा? आखिरी मौत, दूसरी मौत। लेकिन जब तक ये सुमसी नहीं आता, क्या लिखा है, बनावटी और नकली कुदरती काम। अबलीस भी दिखावे के लिए बहुत दफा नकली काम करता है, जिसकी हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है। ये सुमसी के लोग दुआ करते हैं, खुदा मौजजा करता है। पीर फकीर, काला तवी धागा, चिट्टा तवी धागा, बाले शाह, ते उस तो बाद अपना कहंदे के बाबा, कहंदे के पुलां वाला, ते बाबा सरकरियां वाला, ते पता नहीं केड़े केड़े। ए कौन? अबलीस दे चेले। तो क्या करते हैं वो? लोगों को शिफा होती है ना, बाजी एक बकरा दे दे तेरा काम हो जाएगा। क्या होती है? शिफा होती है। कौन करता है? अबलीस। अबलीस कुदरत और निशानों और जीव कामों से लोगों को गुमराह करेगा और कर रहा है। हम खुद करते रहे, हमारा जो दरबार है कब्रस्तान में, चाचा जी, दादा जी और मैं खुद खुद तवीत बनाता रहा। क्या करते थे? लोगों को गुमराह। किसकी ताकत से? यसु की ताकत से? नहीं, यसु का कहते थे कि हम यसु का नाम लेते हैं, हम क्या करते हैं, मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं, यसु को मानते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन किसका काम करते थे? अबलीस का। मोजजे होते थे, लोग क्या करते थे, शिफा पाते थे, लोगों की बीमारियां दूर होती थी। किस लिए? अबलीस अजीब अजीब काम करके क्या करता है, गुमराह करता है। इसलिए हमें अपने मुखालफ के बारे में जानने की जरूरत है। अगर कोई किसी बहन भाई को देखे कि वो तरताली वाले बाबे के पास जाता है, या फिर बाले शाह के पास जाता है, या किसी तस्वीर के आगे देवी देवता, या कोई चिराग बत्ती, या कोई भी, या क्या कहते हैं कि साहिवाल में एक पेंड है, उसे क्या कहते हैं, 86 वाला बाबा, 86 वाला बाबा जी, ताडा अपना कहते कि एक मिठाई का टोकरा लेगा तो ताडा सारा कुछ काम हो जाएगा, शैतान के पैरोकार। बेशक वो बाइबल खोल के आपको दिल के हाल बता देंगे, शैतान का काम। इसलिए यीशु मसीह के पैरोकारों और शैतान के पैरोकारों में हमें फर्क करने की जरूरत है। और जिंदा मिसाल टीयर पाल के मानने वाले कौन है? यीशु की प्रस्तुति करते हैं? हरगिज नहीं। टीयर पाल का शहजादा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, कहां पर लिखा है? बाइबल में लिखा है? हरगिज नहीं। सो ऐसी कड़वी तालीम को हमें सुनने की और समझने की जरूरत है। सवाए किसी और नाम के, यीशु नाम के कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात, शिफा, जिंदगी, इत्मीनान या परस्तिश के लायक हो। कोई और नाम नहीं। टीयरपाल ने जी 50 रोजे रखे, मूसा ने 40 40 दो या तीन बार रोजे रखे, तो क्या मूसा की बात करना शुरू कर दें? हरगिज नहीं। एलिया ने अजीब अजीब काम, एलिया ने 7 मोजजे किए, अलीशा ने 14 मोजजे किए, तो क्या हमें एलिया की इबादत करनी चाहिए, एलिशा की इबादत करनी चाहिए? हरगिज नहीं। वाहद एक नाम बख्शा गया है और वो नाम यीशु नाम है। कोई और नाम इस लायक ही नहीं कि हमारा सर उसके आगे झुके। सो ये वो बात है कि उसके बनावटी, नकली और दिखावे के काम जो शैतान करता है, पीरों के वसीला से, बाबों के वसीला से, तबीतों के वसीला से, कब्रों के वसीला से, दरबारों के वसीला से, सब क्या है? अबलीस की तरफ से है। कड़वा सच है लेकिन सच है। और गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ये इंडिया के रहनुमा हैं, जिन्होंने इंडिया की रहनुमाई की, उनका ये बयान है, सच सच है कोई यकीन करे या ना करे, झूठ झूठ है पहे सारा जमाना यकीन कर ले। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। आए हम दुआ करें। कादरे मुतलक खुदा, हम सब की रहनुमाई कर, ताकि फरेब देने वाले अबलीस और उसके झूठे और उसके झूठे निजाम को पहचाने, और जैसे एलिया दलेरी के साथ बाल के पुजारियों के सामने खड़ा हुआ, खुदावंद हम भी तुझ में कायम रहें और अय्यूब की तरह कहने वाले, मैं अपने मखलसी देने वाले यीशु मसीह को जानता हूँ, जानती हूँ, और उसके सिवा किसी के आगे मेरा सर नहीं झुकेगा। यीशु के नाम में हम सब की रहनुमाई कर, और जो कुछ भी करें सारा जलाल तेरे नाम को मिले। हम सब की रहनुमाई कर, ये दुआ मांगते हैं। आमीन।